श्रवण स्वामी मीमांसा सूत्र पर प्राप्त सर्वप्रथम व्याख्या का नाम शाबर भाष्य है। इसके रचयिता शबर स्वामी है। डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार राजा विक्रमादित्य शबर स्वामी के पुत्र थे। विक्रमादित्य की माता क्षत्रिय वंशीया थी। अतएव इस प्रमाण से शबर स्वामी का समय लगभग 57 वर्ष ईसा पूर्व होना चाहिए। शबर स्वामी का असली नाम आदित्य देव एवं भर्तृहरि तथा वराह मिहिर को इनका पुत्र माना जाता है। जैनों के उत्पीड़न के कारण आदित्य देव ने वनवासी शबर का वेश धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें शबर स्वामी कहा जाता है। शबर स्वामी के संबंध में उक्त सभी सूचनाओं को कीथ महाशय कोरी कल्पना मानते हैं। इनके अनुसार शबर स्वामी का समय 400 ईस्वी सन के पूर्व नहीं होना चाहिए। वार्तिक काल डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार शबर भाष्य एक व्याख्या वार्तिक थी। यह व्याख्या आज उपलब्ध नहीं है। इसके रचयिता को वार्तिककार ही कहा जाता है क्योंकि उनका नाम अज्ञात है। डॉक्टर झा के अनुसार इसी व्याख्या को आधार मानकर प्रभाकर ने शबर भाष्य पर बृहति नामक व्याख्या लिखी थी। प्रभाकर शबर स्वामी के पश्चात प्रभाकर तथा कुमारिल इन दो मीमांसकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया। इस प्रकार शबर भाष्य के पश्चात मीमांसा दर्शन की दो भिन्न भिन्न शाखाएं बन गयी। डॉक्टर गंगानाथ झा के समान कीर्त महाशय प्रभाकर मत का उद्भावक प्रभाकर को न मानकर वार्तिककार को मानते हैं, जिनकी कृति का अनुसरण करके उन्होंने बृहति नामक अपनी व्याख्या लिखी। परंपरा प्रभाकर को कुमारिल का शिष्य मानती है। प्रभाकर के मत को गुरुमत भी कहा जाता है। कीर्त प्रभाकर को कुमारिल का परवर्ती मानने को तैयार नहीं। उनकी उक्ति है कि कुमारिल ने प्रभाकर के मतों की आलोचना की है और स्वतंत्र मत स्थिर किए हैं, जबकि प्रभाकर शबर भाष्य का अनुमोदन करते हुए चलते हैं और कहीं भी कुमारिल मत की आलोचना करते नहीं पाए जाते हैं। प्रभाकर ने संभवतः केवल बृहति एवं लघ्वी दो वृत्तियां लिखी हैं। लघ्वी को विवरण भी कहा जाता है। इनकी शैली सरल है। समस्त पदों का यत्र तत्र ही प्रयोग मिलता है। भाषा का स्पष्ट है। प्राय एक ही वाक्य में अनेक विचारों को प्रश्रय नहीं दिया गया है। ग्रंथ प्राय प्रश्नोत्तर रूप में है, अतएव कहीं कहीं पूर्वोत्तर पक्ष समझने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। कुमारिल भट्ट एक प्रतिभा संपन्न मीमांसक थे। दर्शन जगत में कुमारिल अपनी मौलिक विचारधारा, प्रखर प्रतिभा तथा सूक्ष्म विवेचन के कारण प्रख्यात है। इनका समय 700 ईस्वी सन माना जाता है। इनके समय में भारत में बढ़ता हुआ बौद्धों का प्रभाव, हिंदू धर्म की तीव्र आलोचना करके उसे हतप्रभ करने में सक्रिय था। कुमारिल ने बौद्ध धर्म के इस प्रभाव को क्षीण करने का श्लाघनीय प्रयास किया। कहा जाता है कि कुमारिल पहले बौद्ध थे, बाद में मीमांसक हो गए। उन्हें आचार्य शंकर की अपेक्षा कहीं अधिक बौद्ध दर्शन का सूक्ष्म ज्ञान था। कुमारिल के निवास स्थान के विषय में मत वैभिन्न है। एक मत के अनुसार ब्राह्मण कुमारिल बिहार प्रांत के निवासी थे। दूसरे मत के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत का निवासी माना जाता है। तिब्बती साहित्य के अनुसार कुमारिल पारिवारिक जीवन भी व्यतीत करते थे। उनके पास 500 दासियां तथा बहुत से धान के खेत थे। कुमारिल रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तीनों ग्रंथ शबर भाष्य के विभिन्न अंशों की व्याख्याएं हैं।
पढ़ो।
एक श्लोक वार्तिक, दो तंत्र वार्तिक, तीन टुप्तिका। इन तीन ग्रंथों के नाम हैं। एक श्लोक वार्तिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति ग्रंथ की रचना श्लोकों में की गई है। यह ग्रंथ शबर भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या है। इस पाद का नाम तर्क पाद है। तर्क संगत दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करने के कारण इसे तर्क पाद कहा जाता है। इसमें अन्य दर्शनों के सिद्धांतों की आलोचना के साथ ही बौद्ध दर्शन की विशेष रूप से आलोचना की गई है। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा दोनों ही दृष्टियों से श्लोक वार्तिक एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। यह ग्रंथ चौखंभा संस्कृत सीरीज बनारस से प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकाशन में पार्थ सारथी मिश्र विरचित श्लोक वार्तिक की व्याख्या न्याय रत्नाकर भी समाविष्ट है। श्लोक वार्तिक पर अन्य व्याख्या सुचरित मिश्र की काशिका नामक व्याख्या है जो त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उम्बेक की तात्पर्य टीका नामक व्याख्या भी श्लोक वार्तिक की महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसका भी प्रकाशन हो चुका है। 2. तंत्र वार्तिक शाबर भाष्य के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तृतीय अध्याय पर्यंत लिखी गई गद्य बहुल व्याख्या का नाम तंत्र वार्तिक है। ग्रंथकार ने प्रकृति ग्रंथ में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस ग्रंथ में वेद, अनुभव, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणों को मीमांसा का आधार बतलाया गया है। आकाश, काल, दिक, आत्मा तथा परमाणुओं को भी वेद के समान नित्य कहा गया है। कुमारिल द्रविड़ भाषा के ज्ञाता थे, किंतु लोगों का यह कथन है कि कुमारिल द्रविड़ थे निस्सार है। कुमारिल ने सबर स्वामी की आलोचना करते हुए एक स्थल पर सबर स्वामी द्वारा 6 महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या जिनका संबंध शब्द से था छोड़ देने का उल्लेख किया है। तंत्र वार्तिक पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई जो इस प्रकार हैं। 1. सोमेश्वर की न्याय सुधा नामक व्याख्या, इसके 2 अन्य नाम भी हैं, राणक तथा सर्वोपहारिणी। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसका प्रकाशन चौखंभा बनारस से हो चुका है। 2. कमला की भावार्थ नामक व्याख्या। 3. गोपाल भट्ट की मिताक्षरा नामक व्याख्या, इस व्याख्या के प्रकाशन के संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, यह व्याख्या जैसा कि नाम से स्पष्ट है संक्षिप्त होगी। 4. अन्न भट्ट की सुबोधिनी नामक व्याख्या, इस व्याख्या के 2 और नाम हैं, सुधाधारा एवं राण को जीवनी। 5. परितोष मिश्र की अजिता नामक व्याख्या, यह व्याख्या अभी तक अप्रकाशित ही है। 6. गंगाधर मिश्र की न्यायपरायण नामक व्याख्या। 3. टुक टीका, यह शाबर भाष्य के शेष 9 अध्यायों अध्याय 4 से 12 की व्याख्या है। इस व्याख्या में श्लोक वार्तिक तथा तंत्र वार्तिक के समान विशद विवेचन नहीं हुआ, अतएव यह अति संक्षिप्त व्याख्या है। टुक टीका पर पार्थ सारथी मिश्र ने 1. तंत्र रत्न नामक व्याख्या लिखी। 2. उत्तम श्लोक तीर्थ की लघु न्याय सुधा नामक व्याख्या है। 3. वेंकटेश विरचित वार्तिकाभरण नामक व्याख्या है। कुमारिल के 2 अन्य ग्रंथ बृहद टीका तथा मध्यम टीका भी प्राप्त होते हैं। पार्थ सारथी मिश्र के अनुसार कुमारिल ने श्लोक वार्तिक के 5वें सूत्र अर्थापत्ति परिच्छेद के 9वें श्लोक में बृहद टीका का उल्लेख किया है। अर्थापत्यंतरायणा मप्युदाहरण प्रपंच पक्ष दोषावरे श्रोत्रादिनास्ती ताया मित्यादिना बृहद टीकायाम दर्शित इत्याह पक्ष दोषेश्विति। कुमारिल की मौलिकता एवं विद्वता से प्रभावित होकर मीमांसकों का एक वर्ग उनके सिद्धांतों का अनुयायी हो गया। यह संप्रदाय भट्ट मत अथवा कौमारिल मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन में भट्ट मत के अनुयायी थे। वेदांत तथा मीमांसा दोनों ही दर्शनों का सूक्ष्म ज्ञान इन्हें था। महामहोपाध्याय एस कुप्पो स्वामी इनका समय ईस्वी सन 615 से 695 के मध्य मानते हैं, किंतु पी वी काणे इनका समय ईस्वी सन 690 से 710 के बीच मानते हैं। विद्वानों का एक संप्रदाय मंडन मिश्र को शंकराचार्य का समकालीन मानता है, दूसरी परंपरा इन्हें कुमारिल का शिष्य बताती है। शंकर दिग्विजय के अनुसार मंडन मिश्र पहले मीमांसक थे। एक बार शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होने पर मंडन पराजित हो गए, तभी से शंकराचार्य के सिद्धांत अद्वैत वेदांत को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ये सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। वेदांत दर्शन पर इनका ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ है। ये भर्तृहरि के शब्दाद्वैत मत के भी समर्थक थे। इनका स्फोट सिद्धि नामक ग्रंथ इस मत की पुष्टि करता है। इन्होंने शंकराचार्य के उपनिषद भाष्य पर बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक तथा तैत्तरीय भाष्य वार्तिक नामक वार्तिक ग्रंथ लिखे। इनके अतिरिक्त इन्होंने नैषकर्म सिद्धि, दक्षिणामूर्ति, स्तोत्र वार्तिक तथा पंचीकरण वार्तिक संज्ञक वेदांत ग्रंथ भी लिखे। मंडन को ही सुरेश्वर मानने को भी सभी विद्वान तैयार नहीं। मंडन प्रखर मीमांसक थे। उन्होंने महत्वपूर्ण मीमांसा ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार है। 1. विधि विवेक प्रकृति ग्रंथ में सूक्ष्मतया विधि का विवेचन किया गया है। विधि विवेचन के साथ ही अन्य वैकल्पिक मतों को भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्रभाकर तथा कौमारिल दोनों ही मतों की आलोचना की गई। वाचस्पति ने इस ग्रंथ पर न्याय कर्णिका नामक व्याख्या लिखी है। यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। 2. भावना विवेक। भावना मीमांसा दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस ग्रंथ पर 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, एक उम्बेद की तथा दूसरी व्याख्या नारायण भट्ट की। 3. विभ्रम विवेक। प्राकृत ग्रंथ में ख्याति पंचक का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 4. मीमांसानुक्रमणिका। इस ग्रंथ की रचना अधिकरणों के क्रम से की गई है। यह ग्रंथ श्लोकों में रचित है। इस पर डॉक्टर गंगानाथ झा ने मीमांसा मंडन नामक व्याख्या लिखी। उम्बेद। कहा जाता है कि उम्बेद कुमारिल के शिष्य थे। विद्वान मंडली में यह विवादास्पद विषय है कि उम्बेद मंडन मिश्र एवं उत्तर रामचरित नाटक के रचयिता भवभूति एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं। कारण शंकर दिग्विजय नामक स्वकीय रचना में विद्यारण्य ने यह उल्लेख किया है कि मंडन मिश्र तथा उम्बेक एक ही व्यक्ति हैं। उम्बेक तथा भवभूति के एक होने का प्रमाण यह है कि भवभूति कृत मालती माधव नाटक का एक श्लोक उम्बेक कृत तात्पर्य टीका का मंगल श्लोक है। यह श्लोक अक्षरशः मिलता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मालती माधव और तात्पर्य टीका दोनों का प्रणेता एक ही व्यक्ति है। तब तो भवभूति और उम्बेक को एक ही मान लेना उचित प्रतीत होता है। मालती माधव तथा तात्पर्य टीका का समान श्लोक इस प्रकार है। ये नाम केचिदिहि नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैव यत्नः उत्पश्यते मम तु कोऽपि समान धर्मा कालोऽयं निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। परन्तु उम्बेक मंडन मिश्र तथा भवभूति सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। कारण मंडन मिश्र की भावना विवेक नामक कृति पर उम्बेक ने एक व्याख्या लिखी है। भावना विवेक के अनेक पाठों से उम्बेक सहमत नहीं है। यथा एक स्थान पर उम्बेक ने लिखा है अति तु समीचीनः पाठ एवं दूसरे स्थान पर स साधुरेव ऐसा लिखा है। यदि मंडन तथा उम्बेक एक ही व्यक्ति होते तो पाठ भेद की यह समस्या न उठ खड़ी होती। इस प्रकार उम्बेक तथा मंडन के विभिन्न व्यक्तित्व की सिद्धि होती है। उम्बेक तथा भवभूति भी भिन्न व्यक्ति ही प्रतीत होते हैं। दोनों की कृतियों में किसी समान श्लोक के मिल जाने भर से उनके प्रणेताओं का समान व्यक्तित्व सिद्ध नहीं होता। हो सकता है कि तात्पर्य टीका में भवभूति का श्लोक प्रक्षिप्त हुआ हो, अर्थात उम्बेक के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने भवभूति के श्लोक को मंगलाचरण के रूप में जोड़ दिया हो, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित सुक्ति रूप श्लोक को किसी दूसरे ग्रंथ में स्थान प्राप्त होना संभव नहीं है। उम्बेक द्वारा रचित 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 1. तात्पर्य टीका। यह ग्रंथ कुमारिल कृत श्लोक वार्तिक की व्याख्या है। इस ग्रंथ की रचना केवल स्फुट सिद्धि अंश तक ही हो सकी। यह ग्रंथ मद्रास से प्रकाशित हो गया। 2. मंडन मिश्र के भावना विवेक नामक ग्रंथ की व्याख्या। यह उनका दूसरा ग्रंथ है जिसका प्रकाशन बनारस से हो गया है। शालिकनाथ मिश्र। प्रभाकर मिश्र के मत के परम समर्थक शालिकनाथ मिश्र का मीमांसा जगत में विशेष स्थान है। इन्होंने प्रभाकर के सिद्धांतों का विकास किया। इनका समय महामहोपाध्याय कुप्पू स्वामी शास्त्री के अनुसार 9वीं शताब्दी है। पंडित गोपीनाथ कविराज के अनुसार शालिकनाथ मिश्र और उदयनाचार्य दोनों का समय एक ही है। शालिकनाथ मंडन मिश्र तथा वाचस्पति मिश्र के मध्यकालीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि शालिकनाथ ने मंडन मिश्र की कृति विधि विवेक से श्लोक उद्धृत किए हैं तथा शालिकनाथ की ऋजु विमला से वाचस्पति मिश्र ने स्वकीय कृति तत्व बिंदु में उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। शालिकनाथ रचित 3 ग्रंथ हैं, जिनके नामों के अंत में पंचिका शब्द प्राप्त होता है, अतः शालिकनाथ का नाम पंचिकाकार भी है। 3 ग्रंथ ये हैं। 1. ऋजु विमला पंचिका। इसे संक्षेप में ऋजु विमला भी कहा जाता है। ऋजु विमला प्रभाकर कृत बृहति ग्रंथ की व्याख्या है। 2. दीपशिखा पंचिका। इसे दीपशिखा भी कहते हैं। यह प्रभाकर द्वारा रचित लद्वी ग्रंथ की व्याख्या है। लद्वी अभी तक अप्रकाशित ही है। 3. प्रकरण पंचिका। प्रभाकर मत का पोषक यह स्वतंत्र ग्रंथ है। इसमें पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत का स्थापन पूर्ण कौशल के साथ किया गया है। यदि यह कहा जाए कि प्रभाकर संप्रदाय के ग्रंथों में इसका सर्वोच्च स्थान है तो अत्युक्ति नहीं होगी। उक्त 3 ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जिसे शालिकनाथ रचित माना जाता है। इस ग्रंथ का नाम है मीमांसा भाष्य परिशिष्ट। वाचस्पति मिश्र दर्शन जगत में वाचस्पति मिश्र का अपना विशेष स्थान है। इनकी प्रतिष्ठा का कारण मौलिक ग्रंथों की रचना न होकर दर्शन के मूलभूत ग्रंथों की विशद व्याख्या है। वैशेषिक के अतिरिक्त सभी आस्तिक दर्शनों पर इनकी व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। वाचस्पति मिश्र मिथिला के निवासी माने जाते हैं। इनके आश्रयदाता का नाम ऋग तथा गुरु का नाम त्रिलोचन था। ये निःसंतान थे। इनकी पत्नी का नाम भामती था। अपनी पत्नी भामती की स्मृति में इन्होंने शंकर भाष्य के ऊपर भामती नामक टीका लिखी। न्याय सूची निबंध में इन्होंने जिस समय का उल्लेख किया है वह 841 ईस्वी के आसपास ठहरता है। अतः वाचस्पति मिश्र का समय 841 ईस्वी के लगभग माना जाना चाहिए। वाचस्पति मिश्र ने मीमांसा दर्शन के दो ग्रंथ लिखे, एक न्यायकर्णिका। यह ग्रंथ मंडन मिश्र के विधि विवेक संज्ञक कृति की टीका है। इस ग्रंथ में अनेक मौलिक दार्शनिक विषयों का विवेचन प्राप्त होता है। असत कार्यवाद तथा सत कार्यवाद पर अधिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ख्यातियों का विवेचन। अंधकार के अतिरिक्त पदार्थत्व की मान्यता एवं स्वप्न ज्ञान की वास्तविकता ग्रंथ में परिपुष्ट हुई है। इस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन के अनेक सिद्धांतों का भी उल्लेख हुआ है। न्यायकर्णिका पर एक व्याख्या भी लिखी गई थी जिसके लेखक परमेश्वर नामक विद्वान माने जाते हैं। दो तत्व बिंदु। इस ग्रंथ में कुमारिल के मत का अनुकरण किया गया है। उक्त ग्रंथों के अतिरिक्त कोष्ठक मीमांसा दर्शनातिरिक्त कोष्ठक बंद जिन ग्रंथों की रचना वाचस्पति मिश्र ने की है वे ये हैं। 3 सांख्य तत्व कौमुदी। यह सांख्य कारिकाओं की व्याख्या है जो अत्यधिक विशद एवं सार गर्भित है। 4 योग वैशारदी। यह ग्रंथ योग भाष्य की व्याख्या है जिसका योग दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। 5 न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका। उद्योतकर ने न्यायवार्तिक पर लिखी गई इस व्याख्या ने प्राचीन न्याय के गिरते हुए वैभव को पुनः स्थापित किया। 6 भामती। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अपनी पत्नी भामती की स्मृति में इन्होंने शंकर भाष्य पर भामती नामक व्याख्या लिखी है जो कि अत्यधिक प्रौढ़ता विशदता एवं सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध है। सुचरित मिश्र। इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक पर काशिका नामक व्याख्या लिखी है। सोमेश्वर भट्ट। इन्होंने तंत्र वार्तिक की व्याख्या की है जिसे न्याय सुधा अथवा राणक कहा जाता है। भवनाथ। इनका समय ईसा की 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने प्रभाकर के मत की पुष्टि करते हुए नया विवेक नामक ग्रंथ लिखा है। मुरारी। मीमांसा जगत में प्रभाकर एवं कुमारिल के मतों के द्वारा दो विभिन्न संप्रदाय हो गए थे। एक तीसरा संप्रदाय मुरारी मिश्र का भी था किंतु मुरारी की कोई भी कृति प्राप्त नहीं होती है। पार्थ सारथी मिश्र। कुमारिल भट्ट के पश्चात भट्ट संप्रदाय में पार्थ सारथी मिश्र का स्थान माना जाता है। इनके सभी ग्रंथ भट्ट मत के समर्थक हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 4 है। पार्थ सारथी अतीव मेधावी मीमांसक थे जिन्होंने भट्ट संप्रदाय को नवीन सिद्धांतों का उपहार दिया। प्रतिपक्षियों की आलोचनाओं का प्रबल खंडन करके दर्शन जगत में भट्ट मीमांसा को प्रतिष्ठित किया। उन्हें सभी दर्शनों का प्रौढ़ ज्ञान था। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास गुप्त के अनुसार इनका समय 9वीं शताब्दी है जबकि डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के अनुसार 13वीं शताब्दी। इन्होंने जिन ग्रंथ रत्नों का प्रणयन किया उनका विवरण इस प्रकार है। 1 न्याय रत्नमाला। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इसमें मीमांसा के अन्य विषयों के अतिरिक्त अध्ययन विधि का विवेचन प्राप्त होता है जो कि अत्यधिक विस्तृत है। अध्ययन विधि का विवेचन प्रथम अध्याय में किया गया है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत स्वतः प्रमाण्यवाद का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में विधि निर्णय पर विचार किया गया है। चौथे में व्याप्ति का विवेचन तथा पंचम में प्रतिज्ञा का विवेचन प्राप्त होता है। षष्ठ अध्याय में नीति तथा कार्य कर्म का विवरण प्राप्त होता है। 7वें से लेकर 11वें तक में अंगत्व का विवेचन उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह ग्रंथ 11 अध्यायों में समाप्त होता है। तंत्र रत्न। कुमारिल प्रणीत टुप टीका की व्याख्या का नाम तंत्र रत्न है। अपनी इस व्याख्या का प्रणयन पार्थ सारथी ने अपनी एक दूसरी कृति न्याय रत्नमाला की रचना के बाद किया है क्योंकि तंत्र रत्न में ही इति न्याय रत्नमालायाम दर्शितम ऐसा उल्लेख मिलता है। चूँकि यह ग्रंथ बाद में लिखा गया है अतः इसमें विचारों की प्रौढ़ता प्राप्त होनी स्वाभाविक है। 3 शास्त्र दीपिका। मीमांसा दर्शन के सकल विषय का विशद विवेचन मीमांसा के इस प्रौढ़ ग्रंथ में प्राप्त होता है। यदि कहा जाए कि शास्त्र दीपिका पार्थसारथी प्रणीत ग्रंथों में है ही नहीं अपितु मीमांसा दर्शन के प्राप्त ग्रंथ राशि में सर्वश्रेष्ठ है तो अतिशयोक्ति न होगी। भाषा विवेचन शैली तर्क पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष के स्थापन की दृष्टि से ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। भाव की सूक्ष्मता भाषा की सरलता एवं विवेचन शैली की आकर्षकता द्रष्टव्य है। विद्वत समुदाय का ऐसा मत है कि शास्त्र दीपिका का अध्ययन करके भट्ट संप्रदाय का सम्यक ज्ञान शक्य है। पार्थसारथी की गति अन्य दर्शनों में भी अप्रतिहत सिद्ध हुई है। उन्होंने सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष माना है। श्रोत्र को दिक् माना गया है, ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शब्द द्विविध होता है, पौरुषेय तथा अपौरुषेय। आप्तवाक्य को पौरुषेय कहते हैं और वेदवाक्य को अपौरुषेय। शक्ति स्वतंत्र पदार्थ है। शास्त्र दीपिका पर लगभग 14 व्याख्याएं हैं। उदाहरण के लिए सोमनाथ कृत मयूख मलिका, अपय दीक्षित कृत मयूखावली, राजचूड़ामणि कृत कर्पूर वर्तिका, यज्ञ नारायण कृत प्रभा मंडल, अनुभवानंदय कृति प्रभा मंडल आदि। 4. न्याय रत्नाकर, कालक्रम से न्याय रत्नाकर ग्रंथकार की अंतिम रचना है। इस ग्रंथ में न्याय रत्नमाला तथा शास्त्र दीपिका का उल्लेख है। यह ग्रंथ कुमारिल कृत श्लोक वार्तिक की व्याख्या है। भाषा में सरलता एवं प्रवाह दर्शनीय है। बौद्ध आदि दार्शनिकों के सिद्धांतों के खंडन में ग्रंथकार का कौशल दृष्टिगोचर होता है। रामकृष्ण भट्ट, इन्होंने पार्थसारथी मिश्र की शास्त्र दीपिका पर व्याख्या लिखी है जिसका नाम युक्त स्नेह पूर्णी है। ये माधव के पुत्र हैं। सोमनाथ, इनके पिता का नाम सूर भट्ट है। ये आंध्र ब्राह्मण थे। शास्त्र दीपिका पर मयूख मालिका नामक व्याख्या की रचना की है। भट्ट दिनकर, इन्होंने शास्त्र दीपिका की व्याख्या लिखी है। कमलाकर, शास्त्र दीपिका के व्याख्याकारों में कमलाकर भी अन्यतम है। विद्यानाथ, इनके पिता का नाम रामचंद्र था। इन्होंने भी शास्त्र दीपिका पर व्याख्या लिखी है। माधव, इनका समय ईसा की 14वीं शताब्दी है। इन्होंने जैमिनीय न्यायमाला विस्तर नामक अति प्रसिद्ध मीमांसा ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ मीमांसा सूत्रों की व्याख्या है। इसमें पद्य भाग में व्याख्या करने के पश्चात इसे गद्य द्वारा स्पष्ट किया है। वेंकट दीक्षित, इन्होंने कुमारिल के ट्रुपटीका नामक ग्रंथ की व्याख्या लिखी जिसका नाम वर्तिका भरण है। अपय दीक्षित, इन्होंने अपने विधि रसायन संज्ञक कृति में कुमारिल पर आक्रमण किया है। इनकी कृति का नाम 2 उपक्रम पराक्रम है। आप देव, ईसा की 17वीं शताब्दी। आपने मीमांसा न्याय प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा जिसे आपो देवी भी कहा जाता है। ये मराठा ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने पिता अनंत देव से ही विद्या का अध्ययन किया, अन्य किसी से नहीं। कीथ ने आपदेव को गोविंद का शिष्य माना है, किंतु चिन्ह स्वामी शास्त्री एवं एजर्टन आदि विद्वान कीथ की इस धारण को निस्सार मानते हैं। चिन्ह स्वामी शास्त्री के अनुसार आपदेव द्वारा सदानंद के वेदांत सार की दीपिका नामक व्याख्या एवं आपस्तंभ श्रौत सूत्र की एक व्याख्या लिखी जाने की सूचना मिलती है। इनके 2 विद्वान पुत्र हुए, अनंत देव एवं जीवदेव। अनंत देव, आपदेव के पुत्र अनंत देव ने मीमांसा न्याय प्रकाश की व्याख्या लिखी जिसका नाम भाट्टालंकार है। इन्होंने स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ की भी रचना की। जीवदेव, अनंत देव के भ्राता जीवदेव ने भट्ट भास्कर ग्रंथ की रचना की। लोगाक्षी भास्कर, ईसा की 17वीं शताब्दी। अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचयिता लोगाक्षी भास्कर के विषय में विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। खंडदेव, इनकी मृत्यु वाराणसी में ईस्वी सन 1665 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्होंने 1 भट्ट दीपिका एवं 2 मीमांसा कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखे। शंभु भट्ट, ईस्वी सन 1708 के खंडदेव के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने गुरु के भट्ट दीपिका ग्रंथ पर व्याख्या लिखी है। गोपाल भट्ट, अपय दीक्षित के विधि रसायन का खंडन इन्होंने अपने विधि रसायन भूषण नामक कृति में किया है। शंकर भट्ट, अपनी विधि रसायन दूषण संज्ञक रचना में इन्होंने अपय दीक्षित के विधि रसायन का खंडन किया है। 2 मीमांसा बाल प्रकाश, इनकी दूसरी कृति है। केशव, विश्वनाथ के पुत्र केशव ने शंकर भट्ट के मीमांसा बाल प्रकाश पर व्याख्या लिखी है। राघवानंद, इनकी कृति का नाम मीमांसा सूत्र दिधीति है। रामेश्वर, इन्होंने मीमांसा सूत्र की व्याख्या लिखी, इस व्याख्या का नाम सुबोधिनी है। विश्वेश्वर, इन्हें गागा भट्ट भी कहते हैं। इन्होंने भट्ट चिंतामणि संज्ञ ग्रंथ की रचना की। कृष्ण यजवा, इन्होंने मीमांसा परिभाषा नामक लघु काय ग्रंथ की रचना की। रघुनाथ, इनकी कृति का काम मीमांसा रत्न है। इन्होंने सुचरित मिश्र कृत काशिका का उपयोग किया है। नारायण तीर्थ मुनि, इन्होंने भट्ट भाषा प्रकाश ग्रंथ की रचना की। रामकृष्ण उदिच भट्टाचार्य, इनके ग्रंथ का नाम अधिकरण कौमुदी है। वल्लभाचार्य एक पूर्व मीमांसा कारिका नामक कृति में 42 कारिकाएं हैं, जिनमें जैमिनी सूत्रों का सार ग्रथित है। इनके द्वारा रचित दूसरे ग्रंथ का नाम दो जैमिनी सूत्र भाष्य है। वेंकटनाथ वेदांताचार्य, कीथ के अनुसार इन्होंने एक मीमांसा पादुका संज्ञक कृति में तर्कपाद के विषय को छंदोबद्ध किया है एवं दो सेश्वर मीमांसा में पूर्व एवं उत्तर दोनों मीमांसा मतों का सम्मेलन कराया है। वेंकटाध्वरी, इन्होंने एक विधि त्रय परित्राण में 3 प्रकार की विधियों की एवं 2 मीमांसा मकरंद में अर्थवाद की प्रामाणिकता प्रतिपादित की है। नारायण, ये केरल निवासी थे। इन्होंने कुमारिला मतानुसारी मान में योदय संज्ञ ग्रंथ की रचना की। लोगाक्षी भास्कर एवं उनका अर्थ संग्रह, लोगाक्षी भास्कर का नाम, इनका नाम भास्कर था, लोगाक्षी इनके परिवार का नाम था। अर्थ संग्रह के उपसंहार श्लोक में इन्होंने अपने को भास्कर कहा है, वहाँ लोगाक्षी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बालानाम सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितो अयम समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह। इसी प्रकार तर्क कौमुदी के उपांतिम श्लोक में इन्होंने अपने भास्कर शर्मा कहा है, विद्वत भास्कर शर्मा यो बाल व्युत्पत्ति सिद्धये यथा कणाद सिद्धांतम करोत्तर्क कौमुदीम। यद्यपि अर्थ संग्रह के मंगलाचरण श्लोक में एवं तर्क कौमुदी के मंगलाचरण गत द्वितीय श्लोक में इन्होंने अपने लिए लोगाक्षी शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, किंतु लोगाक्षी वंश नाम ही प्रतीत होता है, जैसा कि अन्य विद्वानों का भी मत है। लोगाक्षी भास्कर का वंश, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, इनके वंश का नाम लोगाक्षी था। इनके पिता का नाम मुद्गल एवं पितामह का नाम रुद्र था। रुद्र कवि थे। डॉक्टर विद्याभूषण के अनुसार लोगाक्षी भास्कर रुद्र के भतीजे थे। लोगाक्षी भास्कर का स्थान, इनके स्थान के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इन्होंने मणिकर्णिका का उल्लेख किया है, किंतु वाराणसी के उल्लेख मात्र से इन्हें वाराणसी का निवासी और वही जन्म लेने वाला मान लेना समुचित नहीं प्रतीत होता। दूसरे मत के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत का निवासी माना जाता है। लोगाक्षी भास्कर का व्यक्तित्व, लोगाक्षी भास्कर वासुदेव एवं रमा के उपासक थे। इन्होंने अपने दोनों ग्रंथों अर्थ संग्रह एवं तर्क कौमुदी के मंगलाचरण एवं तर्क कौमुदी से एवं एक उपसंहार श्लोक में भी वासुदेव एवं रमा को प्रणाम किया है। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्करः श्री वासुदेव नवनीर दाभम रमाधरालंकृत पार्श्वभागम श्री वासुदेवम सुरवैरिभंगम रमाधरा लिंगित सुंदरांगम। इनके वासुदेव रमा पौराणिक प्रतीत होते हैं, कारण इन्होंने अपने वासुदेव को मत्स्य आदि अवतार लेकर संसार को संतुष्ट करने वाले पौराणिक ईश्वर के रूप में उल्लेख किया है। श्री वासुदेवम नवनीरदाभम रमाधरालंकृत पार्श्वभागम मत्स्यादि रूप कृत लोकतोषम विद्या निदानम परमम नमामि। इसी विषय की पुष्टि तर्क कौमुदी के अंतिम मंगलाचरण श्लोक में प्रयुक्त वासुदेवम के विशेषणों से भी होती है। श्री वासुदेवम सुरवैरिभंगम रमाधरालंकृत सुंदरांगम पादाब्ज संभूत पवित्रमंगम नमामितम वारित दोष संगम। लोगाक्षी भास्कर को अपनी विद्वता पर गर्व था। अनेक संस्कृत विद्वानों की भांति इन्होंने अपनी विद्वता का उल्लेख अपने शब्दों में किया है। तर्क कौमुदी के उपसंहारगत उपांतिम श्लोक में प्रयुक्त विद्वत भास्कर शर्मा पद एवं अर्थ संग्रह में सुमेधशा पद इनके अपने विद्याभिमान की सूचित को सूचित करते हैं। अर्थ संग्रह का निर्माण करते समय इन्होंने जैमिनी को प्रणाम नहीं किया, किंतु तर्क कौमुदी के मंगल श्लोक में अक्षपाद और कणाद को नमस्कार किया है। अक्षपादम मुनीनत्वा कणादम च ततः परम लोगाक्षीणा भास्करेण तन्यते तर्क कौमुदी। लौकाक्षी भास्कर के स्थिति काल के विषय में दो मत, एक आपदेव से पूर्ववर्ती। कुछ विद्वानों का मत है कि आपदेव ने अपने मीमांसा न्याय प्रकाश संज्ञा ग्रंथ की रचना लौकाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह को आधार बनाकर की है, अतएव लौकाक्षी भास्कर पूर्ववर्ती हैं, आपदेव परवर्ती। इस मत के समर्थकों में अन्यतम प्रबल समर्थक एजर्टन महोदय हैं। इन्होंने मीमांसा न्याय प्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। लौकाक्षी भास्कर को आपदेव से पूर्ववर्ती मानने के पक्ष में इनके विचार इस प्रकार प्रतीत होते हैं। एक, मीमांसा न्याय प्रकाश में बहुत से अंश ऐसे हैं जो अर्थ संग्रह के प्रासंगिक स्थलों से अधिक समीप हैं, न कि न्याय रत्नमाला के अंशों से। यद्यपि छिन्न स्वामी ने कुछ ऐसे समान अंशों की तुलना दिखलाकर न्याय रत्नमाला को मीमांसा न्याय प्रकाश की रचना का आधार माना है, किंतु वे अंश जितने समीप अर्थ संग्रह से हैं उतने न्याय रत्नमाला से नहीं। इस विषय में संदेह नहीं है कि आपदेव ने न्याय रत्नमाला का उपयोग किया था, किंतु साम्य के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत से ऐसे अंश हैं जो सीधे न्याय रत्नमाला से नहीं गृहित हुए हैं अपितु अर्थ संग्रह से। दो, अर्थ संग्रह लघुकाय ग्रंथ है, अनेक स्थलों पर अस्पष्ट भी है। आपदेव ने विषय को सुस्पष्ट करने के लिए अर्थ संग्रह को आधार बनाकर वर्ण विषय का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। दो, मीमांसा न्याय प्रकाश में कुछ ऐसे अंश हैं जिनमें अर्थ संग्रह के मत का खंडन मिलता है, किंतु इस प्रसंग में अर्थ संग्रहकार ने आपदेव के मत पर विचार नहीं किया अपितु पूर्णतः मौन है। एजर्टन ने ऐसे कई अंशों का निर्देश किया है, उनके मत में ऐसे अंशों में से मीमांसा न्याय प्रकाश का निम्नलिखित अंश भी है। न तन मात्र संकोचार्थवाद उपसंहारस्य तदन्य मात्र संकोचार्थत्वात् पर्युदासस्येति केचित् अन्येतु। एजर्टन महाशय यहाँ अर्थ संग्रह के उपसंहारों की तन्मात्र संकोचार्थ पर्युदासस्तु तदन्य मात्र संकोचार्थ इति ततो भेदात् इस अंश का खंडन मानते हैं। उनके अनुसार केचित एवं अन्य पदों में क्रमशः सोमेश्वर एवं पार्थ सारथी मिश्र के मत को नहीं लिया जा सकता, जैसा कि चिन्ह स्वामी शास्त्री ने लिया है, कारण इनकी कृतियों में प्रासंगिक मत नहीं प्राप्त होता है। आपदेव से परवर्ती कीथ एवं डॉक्टर राधाकृष्णन आदि विद्वान लौकाक्षी भास्कर को आपदेव से परवर्ती मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार लौकाक्षी भास्कर ने मीमांसा न्याय प्रकाश को आधार मानकर अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार लौकाक्षी भास्कर का समय ईसा की 17वीं शताब्दी निश्चित होता है। एजर्टन महोदय के उक्त विचार सारहीन प्रतीत होते हैं, कारण मीमांसा न्याय प्रकाश के अंशों की समानता न्याय रत्नमाला के अंशों की अपेक्षा अर्थ संग्रह के अंशों से अधिक होने पर आपदेव को अर्थ संग्रह का अनुगमन करने वाला मान लेना उचित नहीं। ऐसा मानना तर्कसंगत होगा कि आपदेव ने न्याय रत्नमाला से जिन अंशों को ग्रहण किया उन्हें स्वामी स्वाभिमत परिवर्तन भी किया होगा। अर्थ संग्रह ने मीमांसा न्याय प्रकाश से प्राय शब्दशः सामग्री ग्रहण की, अतएव दोनों ग्रंथों में अधिक समानता है। दो, अर्थ संग्रह लघुकाय ग्रंथ है, अधिक स्थानों पर अस्पष्ट है। संभवतः उसे स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए ही आपदेव ने मीमांसा न्याय प्रकाश की रचना की। यह युक्ति भी सारहीन इसलिए प्रतीत होती है कि 17वीं शताब्दी मीमांसा युग के ह्रास का काल है। ह्रास काल में रचित ग्रंथों का कलेवर उत्तरोत्तर प्राय कम होता जाता है। मीमांसा न्याय प्रकाश भी मीमांसा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बड़ा पड़ रहा होगा, अतएव उसी को संक्षेप करके अर्थ संग्रह ग्रंथ की रचना की गई। यह दूसरी बात है कि एक आध स्थलों पर अर्थ संग्रह ने विषय को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट कर दिया है। तीन, ऐसा प्रतीत होता है कि एजर्टन महाशय ने कतिपय उद्धरणों की ओर संकेत करके मीमांसा न्याय प्रकाश में अर्थ संग्रह का खंडन माना है, वह भी उपयुक्त नहीं है, कारण जिस मत का खंडन मीमांसा न्याय प्रकाश में हुआ है वह प्राचीन है, अतः वह अवश्य किसी ग्रंथ का मंतव्य होना चाहिए, भले ही एजर्टन महोदय को वह मत ढूंढने पर न मिल सका हो। चिन्ह स्वामी ने प्राय उन स्थलों से प्रासंगिक मतों के उद्भावकों का उल्लेख भी किया है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अर्थ संग्रहकार ने किसी नवीन मत को जन्म नहीं दिया, उन्होंने सरल भाषा में परंपरागत मीमांसा को संक्षेप मात्र कर दिया है, किंतु प्रतिपादित मत किसी विद्वान की दृष्टि में उपयुक्त हो सकते हैं, दूसरे की दृष्टि में अनुपयुक्त, यद्यपि मीमांसा न्याय प्रकाश का मत अर्थ संग्रहकार के मत के विरुद्ध है, किंतु फिर भी अर्थ संग्रह में न तो उसका खंडन मिलता है न ही मंडन। यह आवश्यक नहीं था कि अर्थ संग्रहकार प्रतिपद मीमांसा न्याय प्रकाश का ही अनुकरण और समर्थन करते, एक आध स्थलों में उन्होंने पूर्व परंपरागत अन्य मत का ही आदर किया होगा। आपदेव द्वारा प्रतिपादित मत का नहीं, अर्थ संग्रह संक्षिप्त ग्रंथ है, उसमें सर्वत्र या बहुत्र मतों के खंडन मंडन का स्थान नहीं सुलभ हो सकता। अतएव यदि अर्थ संग्रहकार ने मीमांसा न्याय प्रकाश के खंडनीय मत का खंडन नहीं किया तो इन्हें आपदेव से पश्चादवर्ती नहीं मान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार लोगाक्षी भास्कर को आपदेव से परवर्ती मानना चाहिए एवं जैसा अधिकांश विद्वानों ने निर्णय लिया है, उनका समय ईसा की 17वीं शताब्दी प्रतीत होता है। लोगाक्षी भास्कर की कृतियाँ। लोगाक्षी भास्कर की दो कृतियाँ प्राप्त होती हैं, एक तर्क कौमुदी, ख दो अर्थ संग्रह, क तर्क कौमुदी। तर्क कौमुदी न्याय वैशेषिक दर्शन का लघुकाय ग्रंथ है। सर्वप्रथम दो मंगल श्लोक पूर्वोक्त लिखित श्री वासुदेवम एवं अक्षपादम मुनिम आदि मिलते हैं। तर्क कौमुदी प्रशस्त पाद के भाष्य का अनुसरण करती है। मंगलाचरण के अनंतर ग्रंथ का प्रारंभ वैशेषिक के पदार्थों के उल्लेख से इस प्रकार होता है, तत्राभिधेया पदार्था तेज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्तैव तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायवकाश काल दिगात्मनांसी नवैव। किंतु जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, इस ग्रंथ में न्याय सम्मत पदार्थों का भी विवेचन किया गया है। मणिकंठ कृत न्याय रत्न के उपघात में वी सुब्रमण्यम शास्त्री ने तर्क कौमुदी के विषय में अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है, लोगाक्षी भास्कर शर्मणा वैशेषिक तंत्र सिद्ध पदार्थ जातत्वम नैयायिक सिद्धम चतुर्विधम प्रमाणम पंचविधान हेत्वाभासांश संक्षेपेण निरूपयन्ति न्याय वैशेषिक दर्शन व्युत्पत्ति सुना उपकाराय तर्क कौमुदी विरचिता व्याप्तिग्राहकस्य पक्षत्वस्य अनेकान्तिकत्रय विवध्यस्य च गंगेशोपाध्यायभिमतस्य निरूपको अयम चिंता मणिकारार्धवचीन इति निश्चित चनुमः बुद्धिनामकस्य गुणस्य निरूपण प्रसंगेन चतुर्विधं प्रमाणं तस्य चतुष्टव प्रमाणस्य पर तस्त्वञ्च सुनिरूपितमत्र बालानामनुपयोगात्रि परीक्षा न कृतेति ब्रुवन् उक्त पदार्थ तत्व ज्ञान से निःश्रेयस हेतु तत्व वचनेन तर्क कौमुदी संजहार। तर्क कौमुदी के अंत में उपसंहार रूप में विद्वद भास्कर शर्मा एवं श्री वासुदेवम आदि दो श्लोक प्राप्त होते हैं। ख अर्थ संग्रह। लोगाक्षी भास्कर की दूसरी कृति अर्थ संग्रह है। यह निर्णय करना कठिन है कि लोगाक्षी भास्कर ने पहले तर्क कौमुदी की रचना की अथवा अर्थ संग्रह की। अर्थ संग्रह पूर्व मीमांसा का ग्रंथ है, वह भी कर्म कांड परक। यह ग्रंथ प्रमाण मीमांसा अथवा तत्व मीमांसा जैसे दार्शनिक विषयों का स्पर्श नहीं करता। इस ग्रंथ में केवल कर्म कांड परक विषयों पर विचार किया गया है, न कि मान में योदय आदि ग्रंथों की भांति वैदिक क्रियातिरिक्त दार्शनिक तत्वों पर भी। मीमांसा दर्शन के मूलभूत ग्रंथ जैमिनी सूत्रों पर आधारित होने के कारण कर्मकांड परक विचार को भी दर्शन माना जाता है। वस्तुतः कर्मकांड पर सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करने के कारण अर्थ संग्रह एवं मीमांसा न्याय प्रकाश आदि ग्रंथों के विचार को दर्शन शब्द से अभिहित करना समीचीन ही है, और इसलिए इन ग्रंथों को भी दर्शन ग्रंथ माना जाता है। विश्व में स्यात कोई ऐसी संस्कृति हो जिसमें कर्मकांड पर ऐसा वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया गया हो। अर्थ संग्रह लिखने का प्रयोजन। 17वीं शताब्दी में मीमांसा दर्शन की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। विद्वत वर्ग विशेषतः न्याय एवं वेदांत दर्शन के पठन पाठन में संलग्न था, अतः मीमांसा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीर्घकाय ग्रंथ उपादेय नहीं थे। आवश्यकता थी ऐसे लघु कलेवर ग्रंथ की जिसके माध्यम से सरलता पूर्वक छात्र का मीमांसा दर्शन में प्रवेश हो सकता। संभवतः इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। लोगाक्षी भास्कर ने ग्रंथ के वासुदेवम रमाकांतम आदि मंगल श्लोक एवं बालानाम सुखबोधाय आदि उपसंहार श्लोक में स्वयं कहा है कि वे बालकों का जैमिनी शास्त्र में प्रवेश हो सके, इसलिए अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। अर्थ संग्रह का मीमांसा दर्शन में स्थान। कर्मकांड परक मीमांसा दर्शन पर अर्थ संग्रह जैसा दूसरा लघुकाय एवं बोधगम्य ग्रंथ नहीं है। मीमांसा परिभाषा आदि ग्रंथ अर्थ संग्रह की समानता नहीं कर सकते। यद्यपि छिन्न स्वामी शास्त्री ने मीमांसा न्याय प्रकाश को निम्नलिखित शब्दों में सर्वोत्कृष्ट कहा है, सुदृढ़मिदं विधातुं शक्यते शास्त्रेऽस्मिन् एतादृशः प्रकरण ग्रंथोऽद्ययावत् प्रकाशं नीतः किं बहुना नाद्याप्येतादृशो ग्रंथो विरचित इत्यपि वक्तुं शक्यते। योऽयमिदानीमुपलभ्यते अस्माभिरर्थ संग्राह्यो ग्रंथ स प्रायणास्य प्रकृति रेवेति कर्व दर समानमेतत्। और उनका कथन यथार्थ भी है, किंतु मीमांसा न्याय प्रकाश अर्थ संग्रह की अपेक्षा बड़ा ग्रंथ है। अतः मीमांसा दर्शन में प्रवेश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जितना उपादेय ग्रंथ अर्थ संग्रह है उतना मीमांसा न्याय प्रकाश नहीं। अर्थ संग्रह की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सरल भाषा एवं शैली है। अर्थ संग्रह की व्याख्याएं। अर्थ संग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत व्याख्या रामेश्वर शिवयोगी भिक्षु ने लिखी है। इस व्याख्या का नाम कौमुदी है। इनके गुरु का नाम सदाशिवेंद्र सरस्वती था एवं सदाशिवेंद्र सरस्वती के गुरु का नाम गोपालेंद्र सरस्वती था। यह व्याख्या बनारस में लिखी गई थी जो कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी है। बम्बई एवं वाराणसी से अर्थ संग्रह के कई संस्करण निकल चुके हैं। डॉक्टर जी थीबो का अंग्रेजी अनुवाद सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। डी बी गोखले ने अर्थ संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसके साथ में मूल कौमुदी व्याख्या भी है एवं अंत में शब्दार्थ कोश भी दिया गया है। यह ग्रंथ ओरिएंटल बुक एजेंसी पूना से 1932 में प्रकाशित हुआ है। ए बी गजेंद्र गडकर तथा आर डी करम कर ने मिलकर अर्थ संग्रह के अनुवाद के साथ ही अंत में सरल अंग्रेजी में टिप्पणी दिया है जो बोधगम्य विस्तृत एवं अत्यधिक उपादेय है। श्री टाटाम्बर स्वामी कृत दीपिका संज्ञक हिंदी टीका चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी से सन 1953 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई है। यह टीका अति संक्षिप्त है और रामेश्वर कृत कौमुदी व्याख्या का अनुगमन करती है। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशित होने के पूर्व संभवतः हिंदी भाषा में प्रकाशित केवल यही एक टीका थी जिसके पश्चात सन 1977 में पंडित राज भट्टाभिराम शास्त्री की अर्थालोक संज्ञक व्याख्या चौखंबा ओरिएंटालिया वाराणसी से प्रकाशित हुई। यह विशद व्याख्या संस्कृत में है जिसका अभिप्राय डॉक्टर वाचस्पति उपाध्याय ने अर्थालोकलोचन नामक हिंदी अपनी हिंदी व्याख्या में प्रकट किया है।